Namaskar and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today is Saturday, so we shall be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please do remember that we do not address stock or company specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. And friends, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Now, formal introduction. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Harsh Ranjan.
Namaskar, Lalima. सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और मार्केट मंत्रा लेकर हम एक बार फिर हाजिर हो गए हैं. वही प्रोग्राम जिसमें हम देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे और साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर. और दिन शनिवार का है और जैसा कि आप सबको मालूम है, आज का दिन श्रोताओं के लिए बेहद खास होता है क्योंकि आप चाहें तो हमसे फोन करके सीधे सवाल पूछ सकते हैं. हाँ, आपके सवाल इकोनॉमी से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित ही होने चाहिए. तीन टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हैं. नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-4464. 011 STD कोड के साथ किसी भी नंबर पर डायल करें, अपने सवाल पूछें. आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद राजीव रंजन, इकोनॉमिक मार्केट एक्सपर्ट. राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
नमस्कार.
And now let's begin today's edition with the headlines in English.
Yes, right away. India's pharmaceutical exports surpassed $30 billion in the last financial year. Domestic benchmark indices wrap up the week with strong recovery by surging over 4.5%. And Finance Minister Nirmala Sitharaman to embark on an official visit to the USA and Peru.
साल 2024-25 में भारत का फार्मा निर्यात 30 अरब डॉलर के पार पहुंचा. घरेलू शेयर बाजारों में सप्ताह 4.5% से अधिक की तेजी रही. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अमेरिका और पेरू की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी. एक वक्त था जबकि भारत दवाइयों के लिए तरसता था और दवाइयां बाहर से आयात करनी पड़ती थीं. लेकिन एक वक्त आज का है. पिछले 10-12 वर्षों में भारत न सिर्फ दवाइयों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि हम अपनी दवाइयां अब विदेशों को निर्यात भी कर रहे हैं. और निर्यात का ये आंकड़ा हमारे लिए बेहद खुशी की बात है लालिमा, क्योंकि भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में 30 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है. अमेरिका एक तिहाई से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ भारत के फार्मा निर्यात के लिए प्रमुख बाजार बना हुआ है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में फार्मा निर्यात 9% की बढ़त के साथ 30 अरब डॉलर तक पहुंचा. मार्च 2025 में फार्मा निर्यात में साल दर साल 30% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई और यह 3,681 मिलियन डॉलर का हो चुका है. ये पिछले वर्ष इसी महीने में 2,806 मिलियन डॉलर था. साल 2024-25 में मूल्य के संदर्भ में अमेरिका को किए गए निर्यात में 14% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. पिछले वर्ष ब्रिटेन, ब्राजील, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका भी भारत की फार्मा निर्यात की सूची में प्रमुख देशों में शामिल थे.
And to add a punchline, Harsh and Rajiv ji, we thought that it was just the defense sector which was central to Atmanirbhar Bharat. We now know that it's extended to pharma, we know it's extended to toys and a lot more. We can discuss that a little later. For the moment, we're now joined by Kumar Naik from Karnataka. Ji.
Hello.
Ji, Kumar ji, sawal puchiye.
Namaskar sabhi ko, main Karnataka ke Tumkur se baat kar raha hu, bol raha hu.
Ji, ji, ji.
To mera ek sawal hai, sir. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते ना म्यूचुअल फंड, उसका बेनिफिट मुझे थोड़ा उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए सर. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं ना समय म्यूचुअल फंड में, सो किस सेक्टर बेहतर होगा और इससे क्या फायदा होता है, इसको इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन।
जी जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में राजीव बताएं।
बिल्कुल, नायक जी की नजर बिल्कुल सही जगह पर है। पहली चीज ये कि जो उनकी म्यूचुअल फंड्स पे दृष्टि है और साथ में लंबी अवधि की दृष्टि से वो निवेश करना चाहते हैं, ये दोनों बातें उनके लिए बहुत ही उपयुक्त हैं और इसमें आगे उन्हें थोड़ा सा कुछ फंड्स के चुनाव वगैरह करने होंगे जरूर। लेकिन जो उनका सवाल है, उनके मन में जो प्रश्न है कि लंबी अवधि के लिए मैं निवेश करूं म्यूचुअल फंड्स में तो क्या फायदा होगा, तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि इस समय म्यूचुअल फंड में यदि आप इक्विटी फंड्स में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर भी डेट फंड्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप इक्विटी फंड्स को चुनते हैं तो वो एसेट क्लास ऐसा रहेगा जो लंबी अवधि का, मतलब मान लीजिए 7 साल 10 साल इस तरह की अवधि में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा आपको ग्रोथ रेट मिलेगा, आपको एक अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद रहेगी। और क्योंकि वो सीधे सीधे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके साथ जुड़ा रहता है मामला, जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है उसी तरह से जो देश की कंपनियां हैं जो कारोबार करती हैं उनकी ग्रोथ रेट होती है, उसके हिसाब से शेयर बाजार बढ़ता है और शेयर बाजार अगर बढ़ेगा तो आपके इक्विटी फंड्स उसी हिसाब से प्रदर्शन करेंगे। तो जगह जो आपने देखी है वो बिल्कुल सही है, आपकी दृष्टि सही जगह पे है, उसमें और रिसर्च कीजिए, अपनी थोड़ी और जानकारी जुटाइए और उसके हिसाब से आप अपना निवेश आगे बढ़ाइए।
जी बिल्कुल राजीव, थैंक यू फॉर ऑल दैट अपडेट। वी मूव ऑन टू दिल्ली एंड वी हैव राकेश कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। जी राकेश जी, सवाल पूछिए अपना।
हाँ, नमस्कार जी। मेरा नाना जी का कुछ शेयर है तो उनका तो डेथ हो गया, तो मेरा मामा जी का नाम पे है मगर वो डीमैट में नहीं था तो वो पेपर में है, अभी उसको इनकैशमेंट कैसे किया जाए अगर डीमैट ना खोलते हुए अभी। और एक सवाल है, और भी कागज कुछ ढूंढ रहा था और भी कुछ हो सकता है शेयर है वो कैसे फाइंड आउट किया जाए कि उनके नाम पर कैसे शेयर है।
ठीक है राकेश जी, हम आपके सवाल को समझ गए। बहुत लोगों के ये सवाल हैं कि पहले उन्होंने फिजिकल फॉर्म में ही रखा था, डीमेटरलाइज यानी डीमेट अकाउंट नहीं है उनके पास, कैसे कर सकते हैं?
देखिए, अब डीमेट तो उन्हें करवाना ही पड़ेगा जी। और जो उत्तराधिकारी हैं, जैसे राकेश जी के मामले में ऐसा लग रहा है कि उनके मामा जी जो हैं वो उत्तराधिकारी होंगे, तो उन्हें अपने नाम से डीमेट करवाना होगा और उसके लिए जो भी कंपनी है उसके साथ उन्हें कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा, बेसिकली उसके रजिस्ट्रार के साथ, और उसे जो शेयर सर्टिफिकेट हैं साथ में जो नाना जी जिनकी मृत्यु हुई है उनके डेथ सर्टिफिकेट और बाकी जो मामा जी उनके लीगल हेयर हैं यानी कानूनी रूप से वारिस हैं, ये सारी बातें सिद्ध करने वाले कागजात जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा और उसके बाद डीमैट में ही उनके मामा जी के नाम के पर वो ट्रांसफर हो पाएगा।
बिल्कुल सही बताया राजीव आपने, और अगर इसको स्टेप वाइज बताएं तो सबसे पहले आपके मामा जी किसी भी बैंक के साथ एक डीमैट अकाउंट खोल लें, और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद जो फिजिकल शेयर हैं जैसा राजीव ने बताया उसको लेकर कंपनी के रजिस्ट्रार से बात करें और बहुत आसानी से, थोड़ी कागजी कार्रवाई की वजह से जरूरत पड़ती है लेकिन वो डीमैटरलाइज,
कोई बैंक हो या कोई दूसरा ब्रोकर भी हो, और आमतौर पर ब्रोकर खुद ही काफी मदद कर देंगे जिनके पास अकाउंट खोलेंगे।
There have been some very fortunate cases where these shares are of blue chip companies and they run into crores of money. So suddenly the grandchild gets a lot of money when they started to demat the shares.
जी बिल्कुल, ये इस पर निर्भर करता है कि वो भूले बिसरे शेयर जो हैं
जी
वो आज की किसी जिंदा कंपनी के लिए हैं या किसी ऐसी कंपनी के लिए हैं जो गुमनाम हो चुके हैं।
गुमनाम हो चुके हैं, बट एट दिस पॉइंट आई मस्ट से दैट लालिमा इज आल्सो ड्रीमिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हिज फैमिली। एनीवे, मिस्टर राय बिहार से जुड़े हुए हैं। राय साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या सवाल है आपका?
सर नमस्ते। सर
नमस्ते जी, सवाल पूछ लें।
सर एक ही सवाल है मेरा।
जी पूछिए।
सर मैं मजदूर लेबर आदमी है, ठीक है
जी,
और थोड़ा थोड़ा मैं रुपया लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड बैंक द्वारा लगावे या SIP द्वारा मंथली में, यही सवाल पूछना।
जी राय जी, राय जी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़े थोड़े कैसे करें?
बिल्कुल, आप श्रमिक हैं, श्रम करते हैं, अच्छी बात है, श्रम का बहुत ऊंचा स्थान है हमारी सोच में और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उसका बहुत महत्व भी है, तो आप इस बात को लेकर ना सोचें, हिचक के ना बताएं कि आप श्रमिक हैं, श्रम करते हैं। और जहाँ तक निवेश का प्रश्न है, म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं आज की तारीख में, आप 250 रुपये लेकर के भी हर महीने निवेश शुरू करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, अभी सेबी की पहल पर सिर्फ 250 रुपए प्रति माह की SIP शुरू की जा सकती है। ऐसा कई म्यूचुअल फंडों ने अभी अपनी स्कीम शुरू कर दी है। तो चूंकि यहाँ पर फंड का नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो पता करेंगे तो
अगर थोड़ी लंबी अवधि में है तो किसी इक्विटी फंड में जा सकते हैं ये।
हाँ, आमतौर पे ऐसी योजनाएं इक्विटी फंड्स में ही आएंगी
जी।
हालांकि कोई जरूरी नहीं है, कुछ डेट फंड्स में भी इस तरह की जो छोटी सिप इसको कहा जा रहा है, छोटी सिप के बारे में आप पता कीजिए। किसी भी म्यूचुअल फंड के पास आप जाइए और आप शुरुआत कीजिए, अच्छा ही रहेगा सब।
राइट, वी नाउ हैव अ रेगुलर कॉलर रत्नाकर जी फ्रॉम मुंबई। जी रत्नाकर जी, सवाल पूछिए। या वेलकम। या गुड इवनिंग जी।
मेरा सवाल है कि अभी जो अनसर्टेनिटी मार्केट में है, तो ऐसे हालत में जो प्रॉफिट में शेयर्स है वो निकालने चाहिए क्या? ये मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल है कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर और IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना कैसा उचित रहेगा क्या? थैंक यू
जी। पहली चीज की जो शेयर मुनाफे में है क्या उन्हें निकाल लेना चाहिए, ये काफी हद तक निर्भर करता है इस पर कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन क्या है और आपको पैसों की जरूरत कब पड़ने वाली है
जी।
यदि आपके पास मतलब आराम से कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि आपको साल 6 महीने के अंदर कोई बड़ा खर्च करना है, तो आप उस निवेश को आप बनाए रख सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में इतनी गिरावट के बाद भी अगर आपका कोई शेयर मुनाफे में है तो इसका मतलब यह है कि आपने काफी पहले उसमें निवेश किया है और जो कंपनी आपने चुनी है वो मजबूत कंपनी है। ये दोनों बातें इस एक स्टेटमेंट से ही साबित हो जाती हैं। तो वैसी कंपनियों में अगर वो निवेश बनाए रखें, अगर लंबे समय का उनका नजरिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने पूछी कि IT को लेकर के क्या करें, और साथ में एक और सेक्टर इन्होंने पूछा था,
डिफेंस था।
डिफेंस जी, बिल्कुल
जी।
ये दोनों ही सेक्टर ऐसे हैं जिनके लंबे समय में भविष्य को लेकर के कोई बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं कि AI आ गया है तो IT सेक्टर का क्या होगा। मुझे लगता है कि जैसे जैसे नई चीजें उभरेंगी वैसे वैसे हमारी कंपनियां अडेप्ट करती जाएंगी उसको। कोई ये संकट नहीं होने वाला है कि AI आएगा तो उनका काम खत्म हो जाएगा। उनके काम का स्वरूप बदल सकता है, उनका बिजनेस बढ़ेगा, मुझे इसमें संदेह नहीं है। और डिफेंस सेक्टर भारत के लिए एक सनराइज सेक्टर है।
बिल्कुल,
बीच बीच में आपको वैल्यूएशन, जहां पर आप इस सेक्टर के शेयरों को चुने वहां पर वैल्यूएशन का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कई बार होता है जिस सेक्टर की या जिस शेयर की बहुत चर्चा होती है उसको लेकर के उसके वैल्यूएशन अनाप शनाप हो जाते हैं। तो वैसे में आप भले ही वो सेक्टर आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या आपके शेयर पे जिस भाव पे आपने खरीदा वहां से आपको फायदा मिलेगा, ये एक सवाल बन जाता है। तो इसलिए सेक्टर अच्छा है, लेकिन जब आप खरीदें तो वैल्यूएशन का खास ध्यान रखें।
बिल्कुल।
यू स्पोक अबाउट IT। आई वाज जस्ट वंडरिंग, सपोज द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंजेस मोर वर्स बेटर, वी डोंट नो, बिकॉज मोस्ट ऑफ IT एक्सपोर्ट्स आर टुवर्ड्स यूरोप एंड US, व्हिच आर गोइंग थ्रू टर्मोइल, यू नो द अटरेंसेस ऑफ द President of America and the inflation there. So do you think that can affect the IT sector?
और यहाँ पर एक add on ये है कि NASDAQ पहले से ही गिरा हुआ है, गिर रहा है लगातार, उस पे चोट, भारी चोट पहुंची है।
जी। देखिए, NASDAQ में जिन कंपनियों के कारोबार को लेकर के सबसे ज्यादा उत्साह रहता है, जिसमें जो 7 मैग्निफिसेंट कंपनीज जिनको कहा जाता है, उन कंपनियों का कारोबार जियोपॉलिटिकल टेंशन से प्रभावित हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया भर में सब लोग एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाने लगेंगे, रोक लगाने लगेंगे, ऊंचे टैरिफ इस तरह के कि हमारा सामान आपके यहां नहीं आए, तो इसका असर इन कंपनियों पर भी पड़ेगा, पड़ सकता है, जो अपनी सर्विसेज कह लीजिए सारी दुनिया में देती हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि स्टील आना रोकेंगे या दवाई आना रोकेंगे या कोई सेमीकंडक्टर चिप आना लाना रोकेंगे। अगर सब कुछ रोकने पर आएंगे तो सर्विसेज भी रोकेंगे। तो जो सर्विसेज ये 7 कंपनियां देती हैं उनपे भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, कई तरह की या तो टैरिफ वाली या गैर टैरिफ बाधाएं खड़ी की जा सकती हैं। तो उनका धंधा प्रभावित हो सकता है, लेकिन भारतीय कंपनियां जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनकी जरूरत खत्म नहीं होने वाली है। तो स्वरूप बदलेगा लेकिन उनके काम चलते रहेंगे।
चलिए, दैट्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑफ यू राजीव जी। ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय अनदर रेगुलर कॉलर अतानु साहा कॉलिंग फ्रॉम कोलकाता। यस अतानु जी, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। या
गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी सर। माय क्वेश्चन इज फॉर द डे इज सर, व्हाट द फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी, द फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया, इट्स वर्क एंड ऑल्सो इट्स एक्सपोर्ट एरिया एंड देयर स्टॉक इनसाइड मार्केट फ्यूचर। Thank you very much, sir.
जी अतानुसार जी, फार्मा कंपनियों का जो अभी सबसे आज की पहली खबर ही यही थी कि हमारा निर्यात किस तरह से बढ़ा है, उन आंकड़ों को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें एक खास बात देखिएगा कि मार्च महीने में काफी तेज बढ़त हुई है निर्यात में
जी,
और अमेरिका में खास तौर पे। तो उसको मैं इस रूप में देख रहा हूं कि जो निर्यात शायद अप्रैल में मई में होने वाला था उसमें से कुछ निर्यात को प्रीपोन कर लिया गया होगा, जिससे कि जो आगे अनसर्टेन टाइम्स रहेंगे ये देख करके जो यहाँ के सप्लायर्स हैं और जो अमेरिका के इम्पोर्टर्स हैं
जी,
उन्होंने सोचा होगा कि भाई पहले से कुछ माल इकट्ठा करके रख लो, आगे पता नहीं टैरिफ कितना बढ़े क्या बढ़े। तो इसके बावजूद, इस फैक्टर के बावजूद एक्सपोर्ट बढ़ने की गति अच्छी है। लोगों के मन में सवाल ये है, जैसे अतनु साहब ये पूछ रहे हैं कि अगर टैरिफ ऊंचे रहते हैं तो क्या एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा।
हाँ।
मेरा एक सिंपल लॉजिक ये है कि फार्मा जो है, मान लीजिए कोई टैबलेट है, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं खाता है कि अच्छा ठीक है आज मुझे मन है तो मैं टैबलेट खाऊंगा, आज मन नहीं है तो आज नहीं खाऊंगा। उसे किसी डॉक्टर ने लिखा है कि आपको फलां दवाई खानी है। अब अमेरिका में बैठे एक पेशेंट की नज़र से देखें, उसे एक टैबलेट लेनी है। अब उसके सामने दो ऑप्शन है, एक कि जो अमेरिका की अपनी कंपनी होगी जिस पर टैरिफ नहीं लग रहा है वो टैबलेट लें, ये भारत की भेजी हुई कंपनी, भारत की कंपनी की भेजी हुई टैबलेट जो है, यहाँ से निर्यात की हुई टैबलेट जो है
जी, जी।
उसको लें जिसको आमतौर पे जेनरिक कहा जाता है,
राइट। हाँ।
दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंशियल बहुत होता है और इसीलिए भारत की जेनरिक दवा कंपनियां वहां काफी सफल हैं। तो अगर अमेरिका की कंपनी पे टैरिफ नहीं भी लगा है और भारत की कंपनी पे टैरिफ लगा भी है तब भी ये प्राइस डिफरेंशियल कम नहीं होने वाला है कोई बहुत उनके बीच में,
लेकिन फासला जरूर कम होगा कीमतों का
हल्का सा। मान लीजिए मैं रुपए में बोलता हूँ, कोई दवा 500 रुपए की है और कोई दवा 100 रुपए की है, 100 रुपए पे आप 20% टैरिफ लगा भी दीजिए या 26% लगा भी दीजिए तो 126 का हो जाएगा
जी।
तो 500 बटन के मुकाबले 100 और 500 के मुकाबले 126
जी जी।
मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, बताइए उस पेशेंट की नजर से या उस कंज्यूमर की नजर से, मैं फार्मा में कंज्यूमर के बदले पेशेंट शब्द इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि वो पेशेंट है तभी वो टैबलेट ले रहा है तभी वो दवा ले रहा है।
ठीक बात।
तो उसकी नजर से आप देखिए वो क्या लेगा, या तो वो कॉन्शियस होगा कि नहीं मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांड ही चाहिए तो पहले से ही अमेरिकी दवाई खा रहा होगा तो भारत के बिजनेस पे असर नहीं पड़ने वाला। और अगर वो पहले इंडियन जेनरिक फार्मा ले रहा है तो वो इस टैरिफ के बाद भी लेगा।
Yeah, and surely, I mean, dollar versus rupee, so our products are going to be a little cheaper than the dollar ones, the dollared ones. And also, I think, Rajivji, the fact that, I mean, as you said, that pharmaceutical is a robust industry here, and jisne lena hai, wo to lena hi hai, phir wo zyada...
और फार्मा में भारत की स्थिति काफी मजबूत हो गई है, अभी भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है तो बिना किसी कारण के नहीं कहा जा रहा है, उसने अपनी जगह बनाई है, अर्जित की है हमने ये जगह।
बिल्कुल बिल्कुल राइट। वी आर नाउ जॉइंड बाय
योगेश शर्मा दिल्ली से, स्वागत आपका योगेश जी, क्या सवाल है?
नमस्कार आप सभी को सर, हमारा सवाल ये है कि एक पोर्टफोलियो जब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इक्विटी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के दो तरीके हैं हमारे पास में, एक म्यूचुअल फंड के थ्रू और एक डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू, डायरेक्ट शेयर के थ्रू। तो क्या इसमें आप ये देखते हैं कि अगर हम कोई रिटर्न का फर्क रहता है, कि बहुत लोगों में ये धारणा है कि अगर हम अपना इक्विटी पोर्टफोलियो 100% म्यूचुअल फंड से कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें डायरेक्ट स्टॉक्स के मुकाबले में डायवर्सिफाइड तरीके से रिटर्न थोड़े कम हो जाते हैं और डायरेक्ट स्टॉक्स में रिटर्न थोड़े ज्यादा रहते हैं। क्या आप भी ऐसा बिलीव करते हैं, डायवर्सिफिकेशन के बाद में दोनों सेम हो जाते हैं?
जी योगेश जी, आपने बहुत सही कहा कि पोर्टफोलियो अगर आपको इक्विटी में बनाना है आपके सामने दो रास्ते हैं, एक तो सीधे खुद आप शेयर चुन करके पैसा लगाएं और दूसरा ये कि आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से लगाएं। अगर आप खुद चुनाव करते हैं तो पहले ये देखें कि वो चुनाव करने के लिए आपके पास जरूरी स्किल सेट है या नहीं है। अगर आप इक्विटी को एनालाइज करना जानते हैं, अगर आप खुद समझते हैं कि कैसे शेयर चुने जाते हैं, उनकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ क्या है, उनके अंदर अगर आप टेक्निकल जोड़ना चाहें तो टेक्निकल मूव्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे, अगर ये सब कुछ आप जानते हैं खुद शेयर चुन सकते हैं तो ज़रूर चुनिए। लेकिन अगर आपके पास ये स्किल सेट नहीं है तो फिर आपके सामने दो रास्ते और बनते हैं, एक कि म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप पैसा लगा दें और दूसरा ये कि आप किसी एडवाइजर के पास जाएं जो आपके बिहाफ पे आपके लिए शेयरों को चुन करके बताए कि आप फला फला शेयर में खरीदें, उनका उनमें पैसा लगाएं, तो वहां भी आप एडवाइजर की फीस देंगे। और म्यूचुअल फंड्स आज की तारीख में आपको 1.5-2% की फीस पे यही काम करके दे रहे हैं। तो इसमें चुनाव आपका अपना है। अगर आपको बहुत कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन चाहिए अपने लिए, अगर आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, तो आप किसी एडवाइजर को लीजिए, वो आपकी व्यक्तिगत जरूरत समझ करके उसके हिसाब से आपके लिए एक पोर्टफोलियो बना करके देगा। लेकिन अगर उतना नहीं करना है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक आसान रास्ता है, और अगर आप खुद शेयर चुन सकते हैं तो फिर नथिंग लाइक इट।
राइट, ऑलराइट, वी हैव सैफ अली फ्रॉम पुणे। जी सैफ जी, सवाल पूछिए।
हाय सर, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग जी।
हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि जो अभी चाइना एंड यूएस का जो टैरिफ वॉर चल रहा है, उसका इफेक्ट गोल्ड के ऊपर पड़ेगा? इज इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? अगर अभी नहीं तो देन व्हेन कैन वी इन्वेस्ट इन गोल्ड?
जी देखिए सैफ अली साहब, बहुत ज्यादा तेजी आ गई है सोने के अंदर, और आम तौर पे जो एक्सपर्ट्स किसी भी एसेट क्लास में साइकिल्स देखते हैं कि तेजी और मंदी के साइकिल्स आते रहते हैं, तो लोग अनुमान लगाते हैं कि अच्छा अगला जो आप साइकिल होगा उसमें कहाँ तक कोई चीज जा सकती है। तो इस तरह से गोल्ड के लिए जो आपके पहले अनुमान लगाए जा रहे थे वो $3,000 या $3,200 इस तरह के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से बताए जा रहे थे, उन भावों को सोना पहले ही पार कर चुका है। तो वैसे स्थिति में इतना बढ़ जाने के बाद क्या आपको नया निवेश करना चाहिए? अगर दुनिया सही सलामत रहेगी, अगर सब कुछ ठीक रहेगा, अगर एकदम से कोई बड़ा इंटरनेशनल क्योस नहीं होने वाला है आगे, तो फिर आपको यहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाहिए सोने के अंदर। लेकिन अगर अनिश्चितता हो जाएगी जिसके बारे में आज कोई सोच नहीं सकता है, तो वैसे स्थितियों में गोल्ड हमेशा एक सेफ हेवन की तरह से काम करता है, और उस समय फिर कौन से भाव आएंगे उनकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आज की तारीख में क्या आपको गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए? जहां तक मुझे लगता है, अगर मेरा अपना विश्वास पूछेंगे, वो एक भविष्यवाणी का आधार नहीं हो सकता, लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि हाँ चीजें आगे चल करके ठीक हो जाएंगी। सब लोग अपने अपने तेवर दिखाएंगे, पैंतरे दिखाएंगे, बाद में सब टेबल पर बैठ के समझौते करेंगे ही। तो आज की तारीख में जो भाव हैं वो काफी ऊंचे हैं, अनिश्चितताओं को काफी ज्यादा फैक्टर इन कर रहे हैं, उसके साथ अभी चलने की शायद जरूरत नहीं है।
जी जी।
और पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय शेयर बाजार भी जो गिरे थे, लगातार हम पिछले 2-3 हफ्तों से अब देख रहे हैं कि इसमें रिकवरी का पैटर्न है। इस सप्ताह भी 4.5% से अधिक की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रही है, एक अच्छी रिकवरी रही है जो घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों से मिले सकारात्मक संकेतों से प्रेरित थी। बेंचमार्क सूचकांकों ने महत्वपूर्ण लाभ के साथ शुरुआत की और पूरे सप्ताह अपनी गति बनाए रखी। सप्ताह के अंत में 50 शेयरों वाला निफ्टी 23,852 के उच्च स्तर पर बंद हुआ और सेंसेक्स पहुंचा 78,553 पर। बैंकिंग शेयरों ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया, जो खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों में कमी और अनुकूल मॉनसून पूर्वानुमान के कारण तेजी से बढ़े हैं। राजीव, आपकी बड़ी पैनी नजर रहती है भारत के शेयर बाजारों पर, लगातार हम देख रहे हैं कि अब 2-3 हफ्तों से बढ़ रहा है 4.5% की तेजी, 78,000 प्लस सेंसेक्स और लगभग 24,000 के पास पहुंचने को है निफ्टी। क्या जो बॉटम था, लो था, उससे अब उबर चुका बाजार और अब आगे की ओर बढ़ रहा है?
हाल में हमने जो निचले स्तर देखे थे, यानी जो बॉटम बना था, क्या उसके पास जा सकता है? मुझे लगता है उसके आसपास जा सकता है एक बार फिर से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई है। तो बाजार हमेशा थोड़ा ऊपर नीचे उतर हुआ ही चलेगा, तो एक झटके में अब यहाँ से एकदम और आगे बढ़ जाएगा, अगर कोई नाटकीय खबर आ गई तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आमतौर पर जैसे बाजार चलता है, और जो आगे हमारे पास कम से कम 90 दिन में से कुछ निकल गए हैं, अभी भी अनिश्चितताओं वाले अच्छे खासे दिन बचे हुए हैं।
जी जी।
तो उन अनिश्चितताओं के बीच में बाजार थोड़ा वोलेटाइल
रहेगा,
और बीच में आपको फिर से कोई नए नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंट जो बॉटम बना है, क्या उसको तोड़ेगा, कोई नया पैनिक बॉटम बनेगा, अभी मुझे नहीं लगता है।
इसमें जो डिप्स हों उसमें आम निवेशक चाहें तो कुछ खरीद सकते हैं।
बिल्कुल, आज की तारीख में कुछ ही दिनों के अंदर काफी तेज बढ़ गया, तो थोड़ा सा वापस एक नीचे की तरफ ऐसे रिट्रेस होना चाहिए या करेक्ट होना चाहिए।
राइट, All right, Finance Minister Nirmala Sitharaman will be on an official visit to the USA and Peru beginning tomorrow. During the course of a two-day visit to San Francisco scheduled tomorrow, Ms. Sitharaman will deliver a keynote address at the Hoover Institution at Stanford University and will interact with top CEOs from prominent fund management firms, besides holding bilateral meetings with CEOs from top information technology firms. How important is this this visit of the Finance Minister, Rajiv?
महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो इस समय अमेरिका और भारत के बीच में जो एक कहिए कि एक ट्रेड एग्रीमेंट होना है, ये साफ दिख रहा है कि ट्रेड एग्रीमेंट होगा. उसकी शर्तें क्या होंगी, उसकी बातचीत चल रही है, उसके बीच में वित्त मंत्री का वहां जाना, उसमें ऑफ कोर्स जो ऑफिशियल कारण है वो जो अंतर्राष्ट्रीय दूसरे कार्यक्रम है उनके लिए वो जा रही हैं, लेकिन साथ में अमेरिका में वहां के अधिकारियों के साथ बातचीत जरूर होगी.
राइट.
और उसमें जो भी ट्रेड डील होनी है उसके कंट्रोल्स जो हैं वो जरूर डिस्कस होंगे.
सर्टेनली वेरी इंपॉर्टेंट.
समय कम है, दो कॉलर्स हैं आपके पास. के सहगल सिलीगुड़ी से, जल्दी से आप सवाल पूछ लें.
हेलो.
हेलो
जी. जी जी.
नमस्कार.
नमस्कार जी. सवाल पूछिए सहगल जी.
मेरी उम्र है 90 साल और मेरी मिसेज की उम्र है 82. प्रॉपर्टी बेची है.
वंडरफुल. ईश्वर आपको स्वस्थ बनाए रखे. सवाल पूछें
जी.
हेलो जी. हाँ, मेरे पास 50 लाख रुपए हैं और मैं बैंक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में या फिर बैंक की FD में. आप क्या मुझे एडवाइस कर सकते हैं, कितना मुझे सीनियर सिटीजन में देना चाहिए या कितना दूसरी उसमें?
जी राजीव जी, 90 साल की उम्र है, वाइफ 82 इयर्स.
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो इस अवस्था के लोगों के लिए निश्चित रूप से काफी अच्छी स्कीम है, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ, उसमें शायद अपर लिमिट है.
अपर लिमिट 30 लाख रुपए. आप दोनों मिलके 15 लाख आप और 15 लाख पत्नी के नाम से कर सकते हैं. आपके वाले में चूंकि सीनियर सिटीजन अकाउंट में दो लोगों का होना अनिवार्य है, तो आपके वाले अकाउंट में आपकी श्रीमती जी और आपकी श्रीमती जी के अकाउंट में आप सहयोगी हो सकते हैं. तो इस तरीके से 30 लाख तो आप सीधा वहां कर दे राजीव, ये बेहतर है.
जी बिल्कुल. तो जिस उम्र में है और निश्चित रूप से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इनके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, उसमें बिल्कुल बिना सोचे समझे जा सकते हैं.
और बाकी 20 लाख रुपए जो है उसे आप बैंक में रखें और खूब आनंद से जीवन व्यतीत करें.
जीवेत शरदम शतम जो कहा जाता है हमारे लिए, उसे
चरितार्थ करें. बहुत सुंदर है जी.
राइट. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टेस्ला इलॉन मस्क हैज सेड दैट ही विल बी विजिटिंग इंडिया लेटर दिस ईयर. एंड further up, President Draupadi Murmu has extended her greetings to all the citizens, especially the Christian community residing in India and abroad on the eve of Easter. And we move on to oil. Well, global crude oil markets were closed for trading in observance of Good Friday. On Thursday, oil prices settled more than 3% higher, supported by hopes for a trade deal between the US and the European Union and new US sanctions to curb Iranian oil exports, which further elevated supply concerns. Your comment on this, Rajiv ji. Oil.
Ji. Oil abhi achhi trajectory mein hai aur वॉलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन फिर भी भारत के लिए काफी कंफर्टेबल स्थिति में है, इतना ही कह सकते हैं अभी.
वी हैव अ स्टोरी अबाउट इलॉन मस्क कमिंग टू इंडिया. व्हाट डू यू थिंक, स्टोरी सेज दैट इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन देयर मे बी अ कोलैबोरेशन. डू यू थिंक देयर विल बी अ सक्सेसफुल कोलैबोरेशन एंड व्हाट डज इट इंटेल फॉर इंडिया ब्रीफली?
काफी कुछ निर्भर करता है कि हमारी ट्रेड डील क्या होती है. और साथ में वो किस तरह के निवेश की योजनाएं लेकर के आते हैं. तो अभी वे आए, स्वागत है.
तो उसमें थोड़ा खींचातानी हो सकती है, क्योंकि हम तो कहेंगे इंडिया फर्स्ट, वो कहेंगे अमेरिका फर्स्ट.
नहीं, दोनों का अपना अपना कहना ठीक है, लेकिन हाँ, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा.
बिल्कुल. आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब वक्त समाप्त हो गया है. तमाम कॉलर्स आप हमसे जुड़े, आपने अच्छे सवाल पूछे, और राजीव आपका उन सारे सवालों का बहुत बेहतरीन जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
कार्यक्रम खत्म करें इससे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस एक बार फिर.
Thanks, Harsh. Yes, friends, before we close, a reminder of the headlines. India's pharmaceutical exports surpassed $30 billion in the last financial year. Domestic benchmark indices wrap up the week with strong recovery by surging over 4.5%. And Finance Minister Nirmala Sitharaman to embark on an official visit to the USA and Peru.
आज के लिए बस इतना ही। कल शाम 6:30 बजे मार्केट मंत्रा के एक नए अंक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। कल रविवार का जो अंक है वो खास तौर पर म्यूचुअल फंड से संबंधित होगा। म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी सवाल हो आज से ही आप उसकी तैयारी कर लें और कल जरूर हमसे पूछें। फिलहाल मार्केट मंत्रा की पूरी टीम की ओर से दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार। We'll be right back.